एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।
नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। नमस्कार कबूल करें संज्ञा का। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारे शोधकर्ताओं के निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए गए तथ्यों से परिपूर्ण है एक गीत 100 अफसाने की ये श्रृंखला। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 2005 की फिल्म ब्लैक का गीत, हाँ मैंने छूकर देखा है। गायत्री अय्यर की आवाज, प्रसून जोशी के बोल और मोंटी शर्मा का संगीत। किस तरह से फिल्म ब्लैक के लिए इसे एकमात्र गीत की योजना बनी। इस गीत के कंपोजिशन में मोंटी शर्मा ने राम प्रसाद शर्मा की सिखाई किस शिक्षा का प्रयोग किया। उत्कृष्ट लेखनी और गायकी के बावजूद प्रसून जोशी और गायत्री अय्यर को उस साल फिल्म फेयर अवार्ड्स में नॉमिनेशंस क्यों नहीं मिले। इस गीत की रिकॉर्डिंग से जुड़ी कौन सी बात गायत्री अय्यर ने बताई, फिल्म ब्लैक से जुड़ी और भी कई कई बातें, ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रही है ए दिव्या।
1989 की फिल्म परिंदा में सह निर्देशक और 1994 की फिल्म 1942 अ लव स्टोरी की पटकथा लिखने के बाद 1996 में संजय लीला भंसाली ने पहली बार स्वतंत्र रूप से किसी फिल्म का निर्देशन किया और वो फिल्म थी खामोशी द म्यूजिकल। इस फिल्म के निर्माण के समय मनीषा कोइराला के मूक चरित्र को जीवंत करने के लिए संजय लीला भंसाली कई दिव्यांग बच्चों से मिले थे। तभी से उनके मन में ख्याल था कि आगे चलकर वे ऐसी ही एक और फिल्म बनाएंगे, बल्कि खामोशी के बनते समय ही उन्होंने ये सोच लिया था कि इसके बाद वो अगली फिल्म ब्लैक ही बनाएंगे। लेकिन खामोशी के पिट जाने से उनके पांव रुक गए और ब्लैक जैसी इंटेंस फिल्म बनाने की सोच से जरा डर गए। पर जैसे ही हम दिल दे चुके सनम और देवदास ब्लॉकबस्टर साबित हुई, उनमें हिम्मत आई और उन्हें लगा कि अब सही वक्त है ब्लैक बनाने का। साल 2003 में उन्होंने ब्लैक फिल्म के निर्माण की घोषणा की, जिसकी कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका हेलेन किलर की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ पर आधारित थी। फिल्म ब्लैक की कहानी एक नेत्रहीन व मूक लड़की मिशेल और उसके शिक्षक देवराज के रिश्ते की कहानी है। देवराज की भूमिका में अमिताभ बच्चन और मिशेल की भूमिका में रानी मुखर्जी, दोनों ने अपने जानदार अभिनय से दोनों किरदारों को पर्दे पर जीवंत कर दिया था। पहले एक बूढ़े शराबी शिक्षक और बाद में अल्जाइमर रोगी अमिताभ बच्चन का अभिनय सर चढ़कर बोलता है, वैसे ही नेत्रहीन मिशेल के चरित्र को क्या खूब उबारा था रानी मुखर्जी ने। उस साल फिल्म ब्लैक के पीछे जैसे पुरस्कारों की कतार सी लग गई थी। गाइड, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है और देवदास के बाद ब्लैक ही वह पांचवी फिल्म थी जिसे फिल्म फेयर अवार्ड्स, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चारों पुरस्कार प्राप्त हुए थे। यही नहीं, पॉपुलर और क्रिटिक्स दोनों कैटेगरीज में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार मिले। कुल मिलाकर ब्लैक को 11 फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त हुए, जो एक रिकॉर्ड बन गया। ये रिकॉर्ड 14 साल बाद 2019 की फिल्म गली बॉय ने तोड़ा 13 पुरस्कार जीतकर। ब्लैक को 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। जब फिल्म ब्लैक लॉन्च हुई थी तब मीडिया में यह खबर आई थी कि इस फिल्म में एआर रहमान संगीत देने वाले हैं, लेकिन बाद में कुछ कारणों से रहमान इस फिल्म के साथ नहीं जुड़ सके और तब इस फिल्म के संगीत का भार सौंपा गया मोंटी शर्मा को, जो बंसाली के साथ इससे पहले हम दिल दे चुके सनम में बतौर म्यूजिक अरेंजर और देवदास में बतौर बैकग्राउंड स्कोरर का काम कर चुके थे। देवदास में मोंटी शर्मा का काम संजय लीला बंसाली को इतना पसंद आया था कि एआर रहमान के बाद दूसरा नाम ब्लैक के लिए उन्हें उन्हीं का याद आया था। और क्यों ना आए, फिल्म ब्लैक में गीतों से अधिक पार्श्व संगीत का महत्व जो होना था, मोंटी शर्मा सुप्रसिद्ध वायलिन वादक पंडित राम प्रसाद शर्मा के पोते हैं, यानी कि संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के प्यारे लाल जी के भतीजे। जी हाँ, राम प्रसाद शर्मा के 6 बेटे हैं, प्यारे लाल, गणेश, आनंद, गोरखनाथ, महेश और नरेश। ये सभी किसी न किसी रूप में फिल्म संगीत जगत से जुड़े हुए हैं। इनमें आनंद शर्मा के बेटे हैं मोंटी शर्मा। मोंटी को भी अपने दादाजी से संगीत की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हुई और संगीतमय परिवार में बड़े होते हुए उनमें भी संगीत के गुण आ गए। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के निर्देशन में 1987 की फिल्म मिस्टर इंडिया में कीबोर्ड बजाकर फिल्म जगत में प्रवेश किया। उसके बाद एलपी के साथ साथ आरडी बर्मन, राजेश रोशन, नदीम श्रवण, जतिन ललित और संजीव दर्शन जैसे संगीतकारों के साथ बतौर संगीत सहायक और अरेंजर काम किया और फिर मोंटी संपर्क में आए संजय लीला भंसाली के, जिनके यहाँ उनके काम को सबसे अधिक शोहरत हासिल हुई। चाहे देवदास का पार्श्व संगीत हो या ब्लैक का, या फिर उसके बाद सावरिया के गाने, वह मोंटी शर्मा का सुनहरा दौर ही तो था। फिल्म ब्लैक के संगीत का पक्ष संजय लीला भंसाली सामान्य फिल्मों से बिल्कुल हटकर रखना चाहते थे। इस फिल्म में वास्तविकता लाने के लिए अपने पहले की फिल्में जैसी लार्जर देन लाइफ गीत संगीत वे नहीं रखना चाहते थे। फिल्म के पार्श्व संगीत को ही फिल्म के मुख्य संगीत के रूप में प्रोजेक्ट करते हुए कुल 22 इंस्ट्रूमेंटल पीसेस का साउंडट्रैक तैयार हुआ। ये पीसेस फिल्म में बतौर पार्श्व संगीत सुनने को मिले और उन्हें iTunes पर जारी किया गया। दोस्तों, इन 22 इंस्ट्रूमेंटल्स के अलावा इस साउंडट्रैक में एक गीत भी था जो आज के हमारे इस अंक के केंद्र बिंदु में है। फिल्म का यह एकमात्र गीत है हाँ मैंने छू कर देखा है, जिसे लिखा प्रसून जोशी ने और गाया गायत्री अय्यर ने। ये गीत इसी उद्देश्य से रचा गया था कि इसका प्रयोग फिल्म में पार्श्व संगीत के तौर पर ही किया जाएगा। इस गीत की रचना प्रक्रिया के बारे में बताते हुए मोंटी शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपने दादा राम प्रसाद शर्मा की शिक्षाओं का पालन किया कि पहले किसी स्थिति के भीतर ज्ञात भावनाओं को पहचानें और फिर यह देखने की कोशिश करें कि उन भावनाओं को संगीत के माध्यम से एक अलग स्तर तक कैसे ले जाया जा सकता है। रानी मुखर्जी के सीक्वेंसेस के लिए उन्होंने स्ट्रिंग्स और पियानो पर लो ऑक्टेव ध्वनियों का प्रयोग करते हुए एक उत्थानकारी आभा उत्पन्न करने की कोशिश की। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन के हिस्सों के लिए आर्मेनिया देश का वाद्य यंत्र डुडुक का प्रयोग किया। इस तरह से मिशेल और देवराज के चरित्रों और उनके मनोभाव के वैषम्य को संगीत के माध्यम से साकार किया। 21वीं सदी के पहले दशक के अग्रणी गीतकारों में एक नाम प्रसून जोशी का है, जिन्होंने उस दौर में एक से एक अर्थपूर्ण गीत फिल्म जगत को दिए और ये गीत भी उन्हीं में से एक है। मौसम की अदला बदली में पवन गुलाबी हो जाती है, हाँ मैंने छू कर देखा है, रात सरक कर चलते चलते बिल्कुल आधी हो जाती है, हाँ मैंने छू कर देखा है। जितना सुंदर गीत का मुखड़ा उतने ही खूबसूरत इसके अंतरे। पहले अंतरे में प्रसून जोशी कहते हैं, गरम गुनगुनी धूप से बात की है मैंने, पानी के बहने में हंसी सुनी है मैंने, सब कहते हैं दीप बुझा है लेकिन बाती सो जाती है, हाँ मैंने छू कर देखा है। पार्श्व गायिका गायत्री अय्यर ने भी बहुत अच्छा गाया है ये गीत और इस गीत से उनके गले के विस्तारित रेंज का पता चलता है। इस गीत के रिकॉर्डिंग से जुड़ी यादें गायत्री अय्यर एक साक्षात्कार में साझा करती हुए कहती हैं कि इस गीत की रिकॉर्डिंग का एक लम्हा उनके दिल के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि ऐसा अक्सर नहीं होता कि किसी को ऐसे आरामदायक माहौल में काम करने का मौका मिलता है जहां कृति की कलात्मक अखंडता पर इतना ध्यान दिया जाता है और उनका पूरा ध्यान गीत की भावनात्मक सच्चाई को महसूस करने पर था। फिल्म ब्लैक के इस एकमात्र गीत और पूरे साउंडट्रैक को फिल्म समीक्षकों के सकारात्मक रिव्यूज मिले। फिल्म समीक्षक जोगेंद्र टुटेजा ने कहा कि हाँ मैंने छू कर देखा है हाल के समय के बेहतरीन गीतों में से एक है। लेकिन यह बेहद अफसोस की बात है कि ना इस गीत की कोई पब्लिसिटी हुई और ना ही इस गीत को फिल्म में शामिल किया गया। संजय लीला भंसाली ने बाद में यह तय किया कि ये गाना फिल्म में नहीं जाएगा। बाद में पूरी फिल्म से अलग अलग दृश्यों को संपादित कर इस गीत का एक वीडियो बनाकर रिलीज किया गया। समीक्षक श्रुति भसन ने भी इस गीत की तारीफ करते हुए कहा कि प्रसून जोशी का जादू फिर से चल गया है। स्क्रीन पत्रिका ने लिखा कि इस फिल्म में संगीत इतनी सहजता के साथ कथानक के साथ एकाकार हो गया है कि इस तरफ अलग से लोगों का ध्यान ही नहीं गया। यही बात एक साक्षात्कार में मॉन्टी शर्मा ने भी कही थी कि अगर बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा बना हो तो वह दर्शकों के अवचेतन मन में चलता है, उसकी तरफ अलग से दर्शकों का ध्यान नहीं जाता। लेकिन अगर बैकग्राउंड म्यूजिक को ही हटा दिया जाए तो दर्शक फौरन इसके न होने की खामी को पकड़ लेंगे। किसी भी फिल्म में गीतों से अधिक महत्व पार्श्व संगीत का होता है। किसी भी फिल्म के निर्माण में तकनीकी दृष्टि से गाने न भी हो तो चलता है, लेकिन बिना पार्श्व संगीत के कोई फिल्म नहीं बन सकती। पार्श्व संगीत से कहानी में नाटकीयता आती है, किरदारों के अभिनय को जान मिलती है और दृश्य का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। बिना पार्श्व संगीत के ऐसा लगेगा जैसे हम कोई फिल्म ना देख रहे हो, बल्कि अपने पड़ोसी के घर में झांक कर देख रहे हो कि वहां क्या चल रहा है। जैसे कि हमने पहले बताया कि फिल्म ब्लैक का संगीत और पार्श्व संगीत एक दूसरे से अलग नहीं है। लेकिन मॉन्टी शर्मा को मिलने वाले पुरस्कारों की बात करें तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व संगीत के ही पुरस्कार इस फिल्म के लिए मिले। फिल्मफेयर, आईफा, स्क्रीन और जी सिने अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। फिल्म के एकमात्र गीत के फिल्म में ना होने की वजह से इस फिल्म को गीत विहीन फिल्म मानते हुए इस गीत के नॉमिनेशंस किसी भी अवार्ड फंक्शन में नहीं शामिल हुए। मॉन्टी शर्मा को तो फिर भी पार्श्व संगीत के लिए कई पुरस्कार मिले, पर प्रसून जोशी और गायत्री अय्यर का काम पूरी तरह से नजरअंदाज हो गया। उस साल फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार बंटी और बबली के लिए शंकर एहसान लॉय को, सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार कजरारे गीत के लिए गुलजार को और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार कजरारे गीत के लिए ही अलीशा चिनॉय को प्राप्त हुए। फिल्म ब्लैक में मॉन्टी शर्मा का काम संजय लीला भंसाली को इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म सांवरिया में संगीत देने का जिम्मा मॉन्टी को दे दिया और इस तरह से पहली बार मॉन्टी शर्मा एक फुल फ्लेज्ड म्यूजिक डायरेक्टर बने। सांवरिया का संगीत और पार्श्व संगीत दोनों मॉन्टी शर्मा ने ही किया। फिल्म सांवरिया के गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी। मॉन्टी शर्मा और संजय लीला भंसाली दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी जम गई थी, लेकिन मॉन्टी को लगने लगा कि अब आगे भंसाली कैंप के बाहर भी काम करना चाहिए। इसलिए जब भंसाली साहब ने अपनी अगली फिल्म गुजारिश के लिए मॉन्टी को ऑफर दिया तो मॉन्टी ने इनकार कर दिया और वहीं से संजय लीला भंसाली स्वयं संगीतकार बन गए। लेकिन आगे चलकर मॉन्टी ने एक बार फिर भंसाली साहब के लिए गोलियों की रासलीला रामलीला का पार्श्व संगीत तैयार किया।
तो दोस्तों, यहाँ आकर पूरा होता है गीत अफसाने का हमारा आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले सप्ताह फिर किसी गीत से जुड़ी बातों को समेट कर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार। एक गीत अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।